स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 26 सितंबर दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का चल रहा है भाषण, उठाया कश्मीर में चरमपंथी हमले का मुद्दा।
दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद।
सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक, कहा खून और पानी साथ नहीं चल सकते। एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष की दो कक्षाओं में उपग्रह स्थापित कर इसरो ने हासिल की बड़ी कामयाबी, अब बाजार पर नजर।
आज का जो लॉन्च है वो कमर्शियल एंगल से बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप एक ही रॉकेट से दो ऑर्बिट अचीव कर रहे हैं, तो ये पूरा नया आयाम खोलता है हमारी सैटेलाइट को।
होंगी और भी खबरें लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि चरमपंथ मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने पूरी दुनिया से चरमपंथ के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब से थोड़ी देर पहले अपने भाषण में सुषमा ने कहा कि अगर कोई देश ऐसी रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे अलग थलग कर देना चाहिए। सुषमा ने कहा कि चरमपंथियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है, ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंधु जल संधि पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत पाकिस्तान के बीच ये संधि साल 1960 में हुई थी। समझौते के मुताबिक सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होता है। ये बैठक भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में हुए चरमपंथी हमले के बाद संधि की समीक्षा के लिए थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दूसरे उच्चाधिकारी मौजूद थे। सीरिया के एलेपो शहर के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हवाई हमले जारी हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले में कई लोग घायल हुए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वो खाने के सामान और दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। तुर्की के एंटाकिया में सेव द चिल्ड्रन की कैरोलाइन एनिंग ने कहा, एलेपो पर जोरदार हमला जारी है, दिन और रात बम बरसाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे घायल हुए हैं, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे स्टाफ का कहना है कि जमीन पर हर तरफ खून है, उनके पास बच्चों की मदद के लिए बेसिक किट भी नहीं है। ये थे कैरोलाइन एनिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख रेड्रिगो रातो को प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में स्पेन में मुकदमा चलाया जा रहा है। रोड्रिगो रातो स्पेन के अर्थमंत्री रह चुके हैं। उन पर आरोप है कि जब वो स्पेन के एक आला बैंक के प्रमुख थे तो उन्होंने कोष का दुरुपयोग किया। वो खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 20 सितंबर के आदेश में संशोधन के लिए आज एक याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने 20 सितंबर के आदेश में कर्नाटक से कहा था कि वो 27 सितंबर यानी कल तक हर दिन तमिलनाडु को 6000 क्यूसिक पानी छोड़े। कर्नाटक ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की खबर से। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण समाप्त किया है। उन्होंने खास तौर से उड़ी हमले का जिक्र किया और उस जिक्र के साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान और बलोच समस्या, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। सीधे चलते हैं सलीम रिजवी के पास न्यूयॉर्क। सलीम, क्या कुछ कहा सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में?
जी, अब ये भी भाषण जैसा आपने बताया खत्म हुआ है और सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जो पिछले हफ्ते की स्पीच थी उसमें जो मुद्दे उठाए गए तो उसका बड़ा तीखा सब जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि किस बात की वो प्री कंडीशन की बात करते हैं कि भारत प्री कंडीशन लगाता है बातचीत के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि भारत ने तो अनप्रेसिडेंटेड यानी बहुत ही बड़े पैमाने पे और अच्छी कोशिशें की जो कि पहले नहीं की गई थी शांति के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब सही नहीं मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद जो देश समर्थन करते हैं तो उनका भी वही हश्र होता है जो आतंकवादियों का होता है। और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पाकिस्तान जो है जो टेररिज्म की जो मानवाधिकार की बात करता है, तो उनका कहना था कि आतंकवाद जो है वो सबसे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो इन्हीं लाइंस पर बात की, जाहिर है जैसे आपने बताया बलोच समस्या की भी वहाँ पाकिस्तान में जो है उसका जिक्र किया उन्होंने, और ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी जो एक विश्व स्तर पे आतंक से लड़ने के लिए जो एक संयुक्त राष्ट्र के तहत एक कन्वेंशन या एक कानून बनाने की बात चल रही, उस पर भी उन्होंने बात की और कहा कि अब समय आ गया है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। और उस पर जो है काम काफी हद तक हो चुका है, लेकिन 1996 से ये लटका हुआ है, तो अब उसको जो है अडॉप्ट किया जाना जरूरी है।
सलीम, आपसे और बात करें इससे पहले सुषमा स्वराज ने जो कुछ कहा, एक छोटी सी क्लिप हमारे पास है, वो सुन लेते हैं।
मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी और मित्रता भी सहजता की तरफ जा रही थी। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं, कभी स्वास्थ्य के हाल का कुशलक्षेम। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, पूरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूँ,
सुषमा स्वराज कह रही थी कि भारत ने अपनी तरफ से सद्भावना की हर कोशिश की, लेकिन जवाब में उन्हें वो उसका उत्तर उस तरह से नहीं मिला। पाकिस्तान का अब क्या रुख रह सकता है सुषमा स्वराज के इस भाषण के बाद?
पाकिस्तान को उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान का जो है वो पहले से उनको ये मालूम था कि भाई इस हद तक सख्त जो है वो आने वाला है मियां नवाज शरीफ के जवाब में जो उनकी स्पीच थी, तो उसके उनका तो यही कहना रहा है, लगता यही है कि जैसे पहले कहते रहे हैं कि आतंकवाद का जो इल्ज़ाम है वो गलत है और पाकिस्तान नहीं इस पर कोई इसमें लिप्त नहीं है। और ये कि जो भारत ने एक एक गिन गिन कर सारे जो आतंकवादी हमले हुए हैं उनका ब्यौरा दिया और पाकिस्तान से उसके जो तार जुड़ते हैं उसके बारे में जो सबूत दिए भारत ने पाकिस्तान को, उसका भी जिक्र करता रहा भारत, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता रहा। और ये भी अब जो लेटेस्ट मांग है पाकिस्तान की कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो है जांच होनी चाहिए उड़ी के मामले में, उड़ी आतंकी हमला जो था, तो लगता यही है कि अब भी वही लाइन लेगा पाकिस्तान और कहेगा कि भाई आप ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, हम इसे बेबुनियाद कहते हैं और आप जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच करा लें, क्योंकि ये अभी 2 दिन पहले तक तो यही रोकथाम था।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम रिजवी न्यूयॉर्क से। अगले कार्यक्रम में आपके पास हम दोबारा आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री ने आज इस संधि को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बारे में पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन क्या यह संभव है कि भारत सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को रोक दे? मैंने बात की पानी और बांध मामलों के जानकार हिमांशु ठक्कर से और यही सवाल पूछा।
देखो, जहाँ तक ऑफिशियली रिव्यू डिमांड करने की बात है तो वो डिमांड हो सकती है। भारत पाकिस्तान को कह सकता है कि हमें इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसको 56 साल हो गए हैं और कश्मीर की असेंबली ने तो इसके ऊपर रिजोल्यूशन भी पास किया था कि हमें इसका रिव्यू करना है। लेकिन जहाँ तक पानी बंद करने की बात है तो इसमें हम बात कर रहे हैं कुछ 4-5 बड़ी बड़ी नदियों की। ये कोई नल तो है नहीं जिसको आपने बंद कर दिया घुमा के। हमारे पास ये सब नदियों का पानी यदि पाकिस्तान में जाने से रोकना है तो हमें फिर वो पानी के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो हमारे पास न इसके ऊपर कोई स्टोरेज है, न कोई डाइवर्जन स्ट्रक्चर है, और यदि हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इसका नुकसान हमारे ही प्रदेश की पर्यावरण को, नदियों को, लोगों को होगा, क्योंकि वो पानी को फिर हम करेंगे क्या। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं कि कुछ पंप लगा दें चेनाब में जो सबसे नजदीक है भारत की तरफ से। तो इसीलिए ऐसा कोई पानी बंद करना संभव नहीं दिखता है।
अगर ऐसी कोशिश की गई, ऐसा फैसला अगर सरकार की तरफ से लिया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
देखो, युद्ध की भाषा में जिसको कोलेट्रल डैमेज कहते हैं, तो उस तरीके का बहुत कोलेट्रल डैमेज होने की संभावना है। सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले कहा कि जब आप पानी रोकेंगे तो उसका सबसे पहला असर हमारे ही प्रदेश की पर्यावरण पे, नदियों पे, उसके बायोडाइवर्सिटी पे, वहाँ के लोगों पे होगा। दूसरा कोलेट्रल डैमेज, देखो इससे कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा कोलेट्रल डैमेज होगा पाकिस्तान के जो किसान है, वहाँ के लोग है, वहाँ की नदियां हैं, वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ की मछली है, ये सब पे भी काफी डैमेज होगा। तो ये दूसरा एक बहुत बड़ा कोलेट्रल डैमेज है। तीसरी बात है कि भारत और भी देशों से नदियां शेयर करता है, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो या चाइना हो, तो इन देशों के साथ आज भारत की एक क्रेडिबिलिटी है कि भारत जब कोई समझौता करता है तो उसका पालन करता है और समझौता दोनों देश को ध्यान में रख के करता है, तो ये क्रेडिबिलिटी जो है उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है।
हिमांशु जी, सिंधु और सतलज ये जो दो नदियां हैं वो चीन से इनका उद्गम होता है और चीन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता है। अगर इस तरह का भारत कोई कदम उठाने के बारे में आगे बढ़ता है तो चीन क्या कदम उठा सकता है?
बिल्कुल, ये सतलज और इंदस दोनों चाइना से निकल के भारत में होके फिर पाकिस्तान जाती है, और जो एक और जो बहुत बड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, और उसकी जो और भी बहुत सारी उपशाखाएं हैं जो तिब्बत होके चाइना होके भारत में आती है। तो आपको दो उदाहरण देता हूँ। जून 2000 की बात है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी जो चाइना से आती है उसमें यकायक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, इससे वहां के लोगों को नुकसान हुआ, किसान को नुकसान हुआ, वहां के खेतों को नुकसान हुआ, और आज तक हमें पता नहीं है कि वो बाढ़ कहाँ से आई, क्योंकि वो तब कोई बारिश नहीं हो रही थी, जून की बात है ये। तीन महीने बाद अगस्त 2000 की साल में ही सतलज में चाइना से अकेले एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, इससे हमारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे उसको नुकसान हुआ, लोग मर गए, हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। उस बाढ़ का कारण भी आज तक हमें पता नहीं। ये दो ऐसे उदाहरण है। अभी ये ऐसे प्रदेशों से ये दोनों नदियां आती है जहां पर ज्यादा जनसंख्या चीन की तरफ नहीं है, और वहां पर चीन यदि ऐसा कुछ कोशिश करता है कि आर्टिफिशियल बाढ़ लाने की, तो ये दो बार ऐसा हो चुका है जिसका आज तक चाइना ने भी हमको नहीं बताया कि क्यों हुआ है। तो ये एक बताता है कि क्या हो सकता है, और जो नुकसान सतलज नदी में हो सकता है और अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है वो शायद बहुत बड़े पैमाने पे होगा यदि ऐसा कुछ होगा तो हमें ऐसी बातों को भी ध्यान रखना चाहिए।
ये थे पानी और बांध मामलों के जानकार हिमांशु ठक्कर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने कहा है कि भारत में रहने वाले पाकिस्तानी कलाकारों को नमक का हक अदा करना चाहिए। बीबीसी से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के सरधाना से विधायक संगीत सोम ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को पाकिस्तान की खुलकर निंदा करनी चाहिए। सुनिए नितिन श्रीवास्तव से हुई उनकी बातचीत।
बिल्कुल, वफादारी करनी चाहिए। अगर जहाँ का नमक, जानवर भी देश का नमक खाता है, केवल मालिक का नमक खाता है तो उसके साथ वफादार रहता है, इसलिए इन लोगों को भी, ये हिंदुस्तान का नमक खाते हैं तो हिंदुस्तान के प्रति वफादार रहना पड़ेगा।
आपने शायद कथित तौर पर यह भी कहा कि कुछ को जूते मारकर निकाल देना चाहिए।
जो हिंदुस्तान के प्रति पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करता है, और अभी तक भी पाकिस्तान के एक भी आर्टिस्ट ने जो हिंदुस्तान से अरबों रुपया कमा रहे हैं, यहाँ बड़े स्टार बने हुए, और एक ने भी अभी तक पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं की है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन संगीत सोम जी, पार्टी आपकी नहीं कह रही है ऐसा?
नहीं, पार्टी भी कह रही है और सब कह रहे हैं, वो पूरा देश कह रहा है, पार्टी छोड़िए पूरा देश कह रहा है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के समर्पित लोग रहने चाहिए और जो हिंदुस्तान की बात करें वो लोग रहने चाहिए? हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का नमक खा के अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो ऐसे लोगों का क्या मतलब हुआ?
स्वयं नरेंद्र मोदी ने रेस्ट्रेंट की बात कही है, संयम की बात कही।
नहीं तो बिल्कुल, इसमें असंयम की कहां से बात आ गई?
अगर जूते मार के भगाने की बात होगी तो फिर असंयम
नहीं। अगर देश में, देश के प्रति हमारे 18 जवान शहीद हो जाएंगे, हमारे 18 जवान शहीद होने के बाद और हम अपनी बात भी नहीं कह सकते तो बेकार है।
लेकिन उन पाकिस्तानी कलाकार जो यहाँ पर रोजी के लिए आए हैं उनकी क्या गलती है संगीत सोम साहब इसमें?
अगर वो पाकिस्तान में भर्त्सना क्यों नहीं करते, पाकिस्तान गलत कर रहा है, वो कहा एक ने भी, उन्हें कहना चाहिए।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता ने भारत में काम कर रहे कलाकारों से 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने की धमकी दी थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी प्रतिक्रिया हुई थी और कई फिल्मकारों ने भी कहा था कि पाकिस्तानी कलाकारों को वापस भेजने से भारत और पाकिस्तान की समस्या का हल नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज सुबह श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C35 का सफल प्रक्षेपण किया, जो अपने साथ 8 उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष में गया और उन्हें सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। इस प्रक्षेपण की महत्वपूर्ण बात यह रही कि एक ही रॉकेट से भारत ने 2 कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए। इस मिशन का मकसद स्कैटसैट 1 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करना था। ये उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा से मौसम की भविष्यवाणी में मदद करेगा। भारत की इस कामयाबी के बारे में मैंने बात की अंतरिक्ष अनुसंधान मामलों की जानकार पल्लव बागला से।
देखिए, आज जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफल प्रक्षेपण किया, उसमें 2-3 खास बात थी। एक तो खास बात ये थी कि पहली बारी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ऐसा एक लॉन्चर इस्तेमाल कर रही थी जिससे कि 2 कक्षा में 2 अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजा जा सके। ये इससे पहले ऑपरेशनली इसरो ने कभी भी नहीं किया था। तो जो भारत का एक वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट था स्कैटसैट, उसको एक कक्षा में भेजा गया जो कि 17वें मिनट में हुआ लॉन्च के बाद, और बाकी 7 सैटेलाइट थे वो लॉन्च के 2 घंटा और 15 मिनट बाद एक अलग कक्षा में एक अलग एल्टीट्यूड पे छोड़े गए। तो ये 2-in-1 मिशन था कि एक ही रॉकेट से आप 2 अलग अलग ऑर्बिट को अचीव कर रहे थे, और ये भारतीय स्पेस एजेंसी के लिए सबसे लंबे दौरान का मिशन था क्योंकि 2 घंटा 15 मिनट तक इस मिशन को पूरा अपना अंजाम देने में लगा है। तो कई महीनों में ये अच्छा मिशन था और 100% सक्सेसफुल बताया गया है इस मिशन को। और इसमें एक आध छोटी खास बात और थी कि इसमें पहली बारी IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स का एक सैटेलाइट था प्रथम। वैसे तो उस सैटेलाइट में कोई खास बात नहीं है, लेकिन IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने बनाया है और पहली बारी किया है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सैटेलाइट पहले नहीं छोड़े गए हैं जो हिंदुस्तान में बने हों, पहले जरूर छोड़े गए हैं, लेकिन IIT बॉम्बे का ये पहला सैटेलाइट था। कहीं ना कहीं IIT बॉम्बे इस मामले में पिछड़ गई थी क्योंकि जो और छोटे बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं बैंगलोर के आसपास के, उन्होंने तो कई सैटेलाइट दागे थे, लेकिन बॉम्बे IIT अभी तक पिछड़ी हुई थी, तो उन्होंने आज अपना एक प्रथम नाम का सैटेलाइट छोड़ा है।
पल्लव, अगर वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो दुनिया में जहां जहां जिन जिन देशों में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तमाम व्हीकल्स के जरिए, उसको अगर हम सामने रखकर देखें तो भारत अभी कहां खड़ा है?
हिंदुस्तान की जो अपनी स्पेस एजेंसी है अभी अपनी नेशनल रिक्वायरमेंट्स ही पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाती है। हमारा अपना बैकलॉग काफी ज्यादा है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का भी। तो जब भी कभी उनके पास स्पेयर कैपेसिटी होती है तो उसमें वो और देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। जैसे आज 3 सैटेलाइट अल्जीरिया के थे, 1 कनाडा का था, 1 अमेरिका का था। तो ये जो लॉन्च व्हीकल थी उसमें स्पेयर कैपेसिटी थी, उसको यूटिलाइज किया गया। और आज का जो लॉन्च है वो कमर्शियल एंगल से बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप एक ही रॉकेट से 2 ऑर्बिट अचीव कर रहे हैं। तो ये पूरा नया आयाम खोलता है हमारी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अपने ही एक नए तरीके से स्पेस में अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट्स को भेजने के लिए।
ये थे अंतरिक्ष अनुसंधान मामलों के जानकार पल्लव बागला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने आज 8वीं बार अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। आज के विस्तार में 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि इनमें से 3 मंत्री ऐसे थे जिन्हें कुछ दिन पहले ही मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया गया था। चुनाव से आने पहले मंत्रिपरिषद विस्तार पर विपक्षी दलों ने चुटकी ली है। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
समाजवादी पार्टी में 2 हफ्ते पहले उठे राजनीतिक और पारिवारिक तूफान की असली वजहों में खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की बर्खास्तगी भी थी। बर्खास्तगी की वजह तो नहीं बताई गई थी, लेकिन माना गया कि राज्यभर में चल रहे अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री की निगाहें उन पर टेढ़ी थीं और अपनी छवि को बचाने के चलते उन्होंने गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया। परिवार में जब सुलह हुआ तो गायत्री की मंत्रिमंडल में वापसी की शर्त भी रखी गई और आज उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में एक बार फिर शपथ दिलाई गई। आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों में शिवाकांत ओझा और मनोज पांडे भी कुछ दिनों पहले बर्खास्त हुए थे, जबकि जियाउद्दीन रिजवी मंत्री पहले मनोनीत हो गए थे लेकिन शपथ नहीं ले पाए थे। बर्खास्तगी के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने 3 मंत्रियों को फिर से अपने साथ जोड़ लिया? इस सवाल के जवाब में मनोज पांडे कहते हैं,
राजनीति में कभी आगे बढ़ना कभी एक कदम पीछे हटना ये राजनीति में चला करता है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक का अधिकार है। उन्होंने सम्मान दिया था, कोई पार्टी में आवश्यकता होगी किसी और आदमी के एडजस्ट करने की तो उन्होंने कुछ लोगों को ड्रॉप किया, आज फिर 2 महीने बाद उन्होंने आगे बढ़ाया और सम्मान दिया। तो हम सब लगातार इस सतत प्रक्रिया के हिस्से हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, अमानी नेताजी और मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं।
आज के विस्तार में अभिषेक मिश्र, नरेंद्र वर्मा और शंखलाल मांझी की राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नति हुई, जबकि रविदास मेहरोत्रा, रियाज अहमद और यासर शाह को राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद पार्टी और यादव परिवार में चला शहमात का खेल अभी भी जारी है। चुनाव से महज कुछ महीने पहले मंत्रिपरिषद का विस्तार भी उसी का नतीजा है। विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
देखिए समाजवादी पार्टी का यह कन्फ्यूजन है, जिन मंत्रियों को हटाया उनकी वापसी की, तो जब हटाया था तो क्या कारण थे और जब वापसी की है तो क्या कारण है, जनता को बताना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे स्मरण है, जब हटाया गया तो ये कहा गया कि भ्रष्टाचार पर एक मुहिम है मुख्यमंत्री की। तो ऐसी कौन सी जगह है सैफई परिवार में जहाँ स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र हो जा रहा है।
वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार और पारिवारिक कलह से लोगों का ध्यान हटाने के लिए समाजवादी पार्टी नए नए प्रयोग कर रही है और ये विस्तार भी उसी का हिस्सा है। पार्टी प्रवक्ता वीरेंद्र मदान कहते हैं,
पारिवारिक विवाद तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा और नाटक था। ये सब लोग इस सरकार को चला के सरकार की आड़ में इस उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को अपनी उंगलियों पर नचाकर बंदर बाट करने में हमेशा से शामिल रहे हैं, आज भी शामिल हैं। इन मंत्री महोदय को दोबारा से चार्ज देके, दोबारा से मंत्रिमंडल में लेके इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि जो भ्रष्टाचार ज्यादा ज्यादा करेगा वो ज्यादा ज्यादा हमारे करीब रहेगा।
मंत्रिपरिषद के इस विस्तार के क्रम में खाद्य और रसद राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को मंत्री पद से हटा दिया गया है। राजभवन में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव समेत कई मंत्री और नेता मौजूद थे। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह और रामगोपाल यादव की गैर मौजूदगी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, आपकी पातियों का। चलते हैं राजेश जोशी और दिव्या आर्य के पास।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ हैं वो शख्सियत जिनकी आवाज़ आप रिपोर्टों में सुनते हैं, यानी दिव्या आर्य, और हंस रही हैं। बताइए दिव्या, इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको?
क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब भी चिट्ठियां पढ़ने आती हूँ, मुझे इतना प्यारा प्यारा तारुफ देते हैं,
विशेषणों से नवाजते हैं। लेकिन आपके हाथ में जो चिट्ठियाँ हैं वो हमें विशेषणों से नवाज रही हैं, आलोचना कर रही हैं या हमारी तारीफ कर रही हैं?
थोड़ा मिला जुला है।
अच्छा, पढ़ डालिए।
तो शुरुआत थोड़ी तारीफ से ही करती हूँ मैं। आशुतोष कुमार पांडे लिखते हैं,
बक्सर बिहार से, मुझे तो पता याद हो गया है। जिला बक्सर बिहार से लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताइए आप।
तो ये कह रहे हैं कि शनिवार को घटना चक्र में बीबीसी के वॉशिंगटन स्थित संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने अमरीका के विदेश विभाग के दक्षिण एशियाई मामलों की प्रवक्ता हेलेना व्हाइट से हिंदी में बातचीत सुनवाई, जो उन्हें बेहद शानदार और जादुई लग रही थी।
और हेलेना व्हाइट ने क्या शानदार हिंदी वाकई बोली थी। मैं भी इस इंटरव्यू को सुन रहा था और मैंने तुरंत ब्रजेश उपाध्याय को वॉशिंगटन में फोन किया और मुझे अच्छा ये लगा कि अमेरिकी होने के बावजूद, जिनका हिंदी का बैकग्राउंड नहीं है, अच्छी शुद्ध हिंदी उन्होंने बोली थी।
और राम तीर्थ लिखते हैं ग्राम बेलसंडी जिला समस्तीपुर से, वो कहते हैं कि नमस्कार, भारत में प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण से बातचीत सुनकर 3 दिनों से जो उनका उद्विग्न मन था उसे शांति मिली है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जनता और पीड़ित परिवारों को जो बात रखना चाह रहे हैं उनको प्रशांत भूषण की मदद से राहत मिल सकेगी।
ये मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं जो अभी जेल से बाहर आए हैं जमानत पर, और बिहार में राजनेता भी हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रशांत भूषण वाली रिपोर्ट जो आपने सुनी। हमारा काम ही है दोनों तरफ का, यानी दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखना।
और विजय बहादुर सिंह लिखते हैं इलाहाबाद से, ये लिख रहे हैं कि श्री रेहान फजल द्वारा माओ से तुंग पर प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम अद्भुत था, उनका तलफ्फुज और आवाज बहुत जोरदार है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम दोबारा से पढ़िए।
विजय बहादुर सिंह।
विजय बहादुर सिंह बिल्कुल तेलियरगंज में ही ये लगता है रहते भी हैं और वहां से हम भी बहुत वाकिफ हैं, तेलियरगंज से हम भी कई बार गुजर चुके हैं, पुरानी यादें आ गई। बहरहाल लिखते रहिए।
और अब मैं आपको एक चिट्ठी पढ़ के सुना रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जो पहली बार लिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो बीबीसी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, प्रियदर्शी सौरभ जो सहायक शिक्षक हैं झारखंड के बोकारो में।
जी
उन्होंने लिखा, मैं रोज दिन भर सुनता हूं और हाल ही में प्रसारित माओ से तुंग के जीवन पर आधारित कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद।
ये रेहान फजल ने भी चीन के नेता चेयरमैन माओ से तुंग के बारे में एक विवेचना की थी जिसकी तारीफ ईमेल से भी बहुत आई है और चिट्ठियां भी लोग लिख रहे हैं। और रेहान साहब को तो ये काम ही है, आप जानती हैं कि भूले बिसरे लोगों के बारे में जिस तरह की जानकारियां वो प्रस्तुत करते हैं वो हमारे तमाम श्रोताओं को बहुत पसंद आती हैं। धन्यवाद।
अच्छा, अब थोड़ी सी आलोचना। धीरज तोतीराम पाखरे लिखते हैं अकोला से,
अकोला महाराष्ट्र से
जी, जी। वो कह रहे हैं कि संडे दिन भर को जो बॉलीवुड दिन भर कर दिया गया है वो उन्हें बकवास लगता है। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति और हस्तियों से बातचीत कराएं जिन्हें सुनकर हमारी जिंदगी बेहतर हो।
बहुत ही इन्होंने तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल किया, बकवास लगता है। मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा इस तरह की चिट्ठियां हमारे पास और भी श्रोताओं की आई है कि संडे दिन भर में फिल्मी लोगों का इंटरव्यू ज्यादा होता है। देखिए, एक इतवार के दिन जब आप शाम को अपना रेडियो खोल के बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है और बहुत सारे दूसरे श्रोताओं को भी लगता होगा कि वो मार काट, राजनीति, हमला, इसके अलावा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की बात भी हो जाए, मनोरंजन की बात भी हो जाए, यही मकसद इसके पीछे है। लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है हम दूसरे शोबे या दूसरे जो फील्ड्स हैं उनके लोगों का भी इंटरव्यू प्रसारित करते रहते हैं।
वैसे ही एक और हम कैसा काम करते हैं उससे जुड़ी एक दरख्वास्त है उमा शंकर दास जी की, किशनगंज बिहार से। उनका ये कहना है कि उनका जिला जो है बहुत संवेदनशील है और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बीबीसी का संवाददाता वहां जाके वहां से भी कुछ रिपोर्टिंग
जी
करे।
कोशिश जरूर रहेगी हमारी कि हम किशनगंज जाएं, लेकिन फिलहाल तो इस तरह का कोई मैं वादा नहीं कर सकता हूं। मैं दिव्या, आप जब मैं ये बात कर रहा था, एक मैं चिट्ठी ने मेरा ध्यान खींचा है, इंडिया लाल रंग से लिखा हुआ है, दो लाल सितारे बने हुए हैं, एक किसी सज्जन ने अपनी फोटो भी लगा रखी है, ये कहां की चिट्ठी है?
ये एक बहुत ही खास चिट्ठी है क्योंकि ये सरहद पार से आई।
सरहद पार यानी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहां से?
ये पाकिस्तान के लोअर दीर जिले से आई है। प्रोफेसर सफी उल हक की ये तस्वीर है और वो लिखते हैं, सभी संवाददाताओं को स्वागत, नमस्कार। और उनकी भी एक
ये रोमन में लिखी है उन्होंने, उर्दू में नहीं लिखी है ना हिंदी में लिखी है
जी। और वो कह रहे हैं कि भूतनाथ फिल्म में जो छोटा बच्चा बांकू है,
इसे मुलाकात करना चाहते हैं?
बिल्कुल वो चाहते
बस,
हैं
बस बस, तो इसके लिए तो आपको हिंदुस्तान आना पड़ेगा साहब। आप वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, हिंदुस्तान आइए, तभी उनसे मुलाकात हो सकती है। लेकिन चिट्ठी आपने लिखी है, बड़े बड़े अक्षरों में इंडिया लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है दिव्या कि अब और किसी चिट्ठी का समय नहीं बचा है, इसलिए चलते चलते पता बता दूं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब थोड़ी खेल की चर्चा। अपने 500वें टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 197 रन से हरा दिया है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए मैच में स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने 10 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया। एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त।
भारत ने अपने 500वें और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में आज 197 रनों से बड़ी जीत हासिल की। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 434 रनों का लक्ष्य था और आज 5वें और अंतिम दिन उसकी पूरी टीम लंच के बाद 236 रनों पर ढेर हो गई। आज सुबह न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी कल के स्कोर 4 विकेट पर 93 रनों से आगे शुरू की। कल 38 रन बनाकर नाबाद रहने वाले रियो क्रोंकी आज 80 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर आर अश्विन को कैच दे बैठे, तो कल 8 रन बनाकर नाबाद रहने वाले मिचेल सेंटनर 71 रन बनाकर आर अश्विन की गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच हुए। ल्यूक रॉन्की और सेंटनर के बीच 5वें विकेट के लिए 102 रनों की साझेदारी हुई। इस जोड़ी के टूटने के बाद भारत की जीत की राह आसान हो गई। इसके बाद विकेटकीपर बीजे वॉटलिंग ने 18 और इश सोढ़ी ने 17 रन बनाए। मार्क क्रेगेक और नेल वेगनर बिना कोई रन बनाए पेवेलियन लौटे। भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 132 रन देकर 6 और मोहम्मद शमी ने 8 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा ने 58 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। आर अश्विन ने पहली पारी में 93 रन देकर 4 विकेट लिए थे और इस तरह उन्होंने इस मैच में 10 विकेट झटके। लेकिन भारत की पहली पारी में नाबाद 42 और दूसरी पारी में नाबाद 50 रन बनाने के अलावा पूरे मैच में 6 विकेट हासिल करने वाले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि पाकिस्तान अगर समझता है कि वो भड़काऊ बयान देकर भारत का हिस्सा छीन सकता है तो उसका मंसूबा पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बीते हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। सुषमा ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहाँ जो हो रहा है वो यातना की पराकाष्ठा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंधु जल संधि पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सीरिया के अलेपो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हमले जारी हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले में कई लोग घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद घटनाचक्र में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया अजित सारथी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।